الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، بارک القرآن کی جلد نمبر 5 سے، اور اس میں شروع کی جو 3 آیات تھیں ان کی تفسیر اور معارف و مسائل وغیرہ پڑھ کے ہم نے مکمل کر لیے تھے پچھلی کلاس میں. 4, 5 اور 6، آیت نمبر 4, 5 اور 6 کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. تو اب 7ویں آیت جو ابھی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم بھلائی اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی. ٹھیک ہے، انسان جب بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کا اس کو خود فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی بھلائی کرنے سے. ٹھیک ہے، تو تم نے، اللہ تعالیٰ بھی ہے نا یہ بات بتا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں انسان کو کہ تم اپنے لیے کرتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات جچتی ہے کہ وہ ہمیں یہ بات کہہ دے. ٹھیک ہے، کہ تم نے جو نیکی کری ہے اپنے لیے کری ہے. ٹھیک ہے، انسان کو یہ بات نہیں سچتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو یہ کہیں کہ تم نے جو نیکی کری سو اپنے لیے کری، میرے لیے تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی بھی کہے کسی دوسرے کو کہ بھائی تم نے اگر نیکی کا کام کیا ہے تو تمہیں خود اس کا ثواب ملے گا، یا تمہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ مل رہا ہے اچھا کام کرنے سے. ٹھیک ہے، تو میں تمہارا کیوں شکریہ ادا کروں؟ ٹھیک ہے، نہیں، انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. یعنی انسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی ترخانہ کسی کو کہ تم نے کون سا احسان کر دیا، اپنے لیے کیا جو بھی کیا، میرے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ٹھیک ہے، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کری، وہ ان اسأتم فلاح، اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لیے، یعنی وہ برائی جو ہے وہ تمہارے اوپر پلٹے گی آ کر کے. اسأتم اسأتم کا مطلب تم نے برائی کی، سا یا سا سا کے اس کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں. تو اسا تم نے برائی کری کسی کے ساتھ تو تم نے اپنے تمہارے اوپر ہے یہ. ٹھیک ہے، دوسرے بندے جس کے ساتھ تم نے برائی کری ہے نا، دیکھیں یہ اسا تم کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ برائی کری اپنے آپ میں کوئی برائی کر، بلکہ اسا تم یعنی تم نے کسی اور کے ساتھ برائی کری ہے نا، تو یہ برائی اس بندے کے اوپر نہیں پڑ رہی بلکہ تمہارے اپنے اوپر پڑ رہی ہے، تمہیں خود اس کا عذاب ملے گا، تمہیں خود اس کی جو ہے وہ سزا اٹھانی پڑے گی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ، بس جب دوسرا وعدہ آ گیا، آخرہ، ٹھیک ہے، یعنی جو آخر کا بعد کا جو ہوتا ہے نا وہ وعدہ آ گیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ ان کے چہرے اداس کر دے، ان کے چہرے جو ہے نا وہ خراب کر دے. کیا مطلب؟ पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी, वकवीना इला बनी इसराइल फिल किताबे लतुफ्सिदुन्ना फिल अर्ध मर्रतैनि वलतअलुन्ना उलूवन कबीरा, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये कह दिया था किताब के अंदर, यानी तौरात में या तौरात के साथ जो वजीफे वगैरह जो सहीफे वगैरह थे उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बता दिया था कि जरूर बिल जरूर तुम जमीन के अंदर दो मरतबा फसाद करोगे। ठीक है, दो मरतबा, मर्रतईन, मर्रतईन का मतलब क्या होता है, दो मरतबा, मर्रा। ये भी उर्दू के अंदर भी जो अल्फाज आए ना, ये ज्यादातर अरबी से आए हैं, तो हम कहते हैं मर्तबा, है ना, दूसरी मर्तबा। ठीक है, तो ये अरबी के ही बिगड़ी हुई शक्लें होती हैं ज्यादातर, जो कि उर्दू के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो मर्रा का मतलब होता है, यानी मर्तबा जैसे उर्दू के अंदर गया गुजरना। ठीक है, तो दूसरी मर्तबा, वलतअलुन्ना उलुवन कबीरा, और बड़ी सरकशी करोगे, यानी दो मर्तबा तुम फसाद भी करोगे और बड़ी सरकशी भी करोगे। ठीक है, तो पहली मर्तबा का तो जिक्र हो गया। ठीक है, फ़ाइज़ा जा वादु उलाहुमा, इन दो मर्तबा में से जो पहली मर्तबा का वादा आया ना, ठीक है, ये ऊपर जिक्र हो चुका पहली मर्तबा फसाद करने का, अब यहाँ पे दूसरी मर्तबा फसाद करने का जिक्र हो रहा है। फ़ाइज़ा जा वादुल आखिरत, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो थी ना, तो वो जब उन्होंने फसाद किया तो अल्लाह ताला का फिर वादा आ गया। वादा क्या आ गया, अजाब का वादा आ गया। ठीक है, तो जब अजाब आता है तो फिर जिनके ऊपर वो अजाब आता है तो उनके चेहरे जो है वो तो फिर बिगड़ जाते हैं ना। ठीक है, उनके चेहरे जो है फिर वो उदास हो जाते हैं, कोई खुशी तो नहीं होती अल्लाह के अजाब अजाब के अंदर। दफा के मानी में भी आता है, हाँ, दफा, दफा का मतलब वो वाला दफा नहीं, दफा दूर करने वाला नहीं, बल्कि टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम या टू टाइम्स, इस तरह दफा करना, मतलब टू टाइम्स। तो वलियदखुलुल मस्जिदा, लाम का यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो ताके के इस्तेमाल में, सो दैट। ठीक है, ताके यदखुलुल मस्जिदा, वो दाखिल हो जाए मस्जिद के अंदर। मस्जिद कौन सी मस्जिद, जो कि बैतुल मुकद्दस के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई थी। ठीक है, ताकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद के अंदर, यानी कौन दाखिल हो जाए, तुम्हारे दुश्मन मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। कमा दखलूहू अव्वल मर्रतिन, जैसे कि वो दाखिल हुए थे पहली मर्तबा, पहली मर्तबा, पहली दफा। ठीक है, जैसे आपने अभी लिखा ना दफा, तो जैसे वो फर्स्ट टाइम दाखिल हुए थे ना, वैसे ही वो फिर से दाखिल हो जाए। वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा, और ताके यहाँ पर भी जेर के साथ लाम जो इस्तेमाल हुआ है, तो उसका तर्जुमा कैसे, ताके है। ठीक है, युतब्बिरू असल में तो लफ्ज है युतब्बिरू, तब्बरा युतब्बिरू तत्बीरन। ठीक है, खराब कर देना, ताकि वो खराब कर दें, मा अलव तदबीरा, जिस चीज के ऊपर भी वो गालिब आ जाए। ठीक है ना, जो भी उनके हाथ लगे, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, जो भी उनके हाथ लगा वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। वलियुतब्बिरू मा अलव तत्बीरन, ठीक है, ताकि वो बर्बाद करें, जिस चीज के ऊपर भी वो गालिब हों, पूरी तरह बर्बाद करना। तत्बीरन का तर्जुमा पूरी तरह बर्बाद करना, अच्छी तरह बर्बाद करना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फिर बनी इसराइल की दूसरी नाफरमानी का तस्करा कर रहे हैं, जो कि इस इतनी हद से बढ़ गई थी कि अल्लाह ताला का अजाब उनके ऊपर आ गया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला का अजाब क्या था, जो वादा कर चुके थे अल्लाह ताला के तुम्हारे ऊपर जो है ना, वो सख्त लोग, सख्त जंगजू लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर कहा था कि बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसन शदीदन। ठीक है, कि हमने तुम पर अपने सख्त लड़ाई वाले बंदे मुसल्लत कर दिए, फजासू खिलाल दियारी, बस वो शहर के अंदर घुस गए, वकाना वादा मफूला, और ये वादा था जो कि होना ही था। ठीक है, क्योंकि तुमने जो है वो खराबी करनी थी, तो इस वजह से हमारा वादा पूरा होना ही था। अच्छा, फिर क्या आगे फरमाते हैं, किसी को तर्जुमे में कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा। आगे फरमाते हैं, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, बईद नहीं तुम्हारे रब से कि रहम करे तुम पर। ठीक है, यानी तुम्हारा रब जो है ना वो रहम से पीछे नहीं हट रहा। अगर तुम माफी मांगोगे, अगर तुम जो है ना वो तौबा करोगे, तो तुम्हारा रब जो है ना वो, यानी वो कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे ऊपर रहम करे, यानी तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। ठीक है, व इन उदतुम, और अगर तुम फिर वही करोगे, उदना, तो हम भी फिर वही करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला बनी इसराइल को कैसे यानी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम करोगे ना फिर वही नाफरमानियां, हम फिर वही करेंगे। उदना, हम भी वही करेंगे। वी विल ऑल्सो रिटर्न द सेम। ठीक है, वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और हमने बना दिया जहन्नम को काफिरों के लिए हसीर, हसीर कैद खाना, जिसके अंदर कोई हिसार में रहता है। हिसार कहते हैं ना, चारों तरफ से अपने आप को अपने घेर लिया, हिसार बना लिया अपने खिलाफ, अपने अपने चारों तरफ हिसार बना लिया। ठीक है, किला बना लिया। तो जहन्नम जो है ना, ये काफिरों के लिए एक किला है कि जिसके अंदर वो बंद होंगे। ये उनकी हिफाजत के लिए किला नहीं होगा, बल्कि ये उनकी सजा के लिए किला होगा, जिसके अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा, हसीर महसूर कर दिया जाएगा किले के अंदर। उम्मीद है कि आप लोग कुछ नोट्स वगैरह भी साथ साथ लिख लेती होंगी, तो समझना भी थोड़ा आसान हो जाता है और याद रखना भी आसान हो जाता है नोट्स लिखने से। अच्छा, इन आयात का अब हम खुलासा तफसीर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो खुलासा तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बयानुल कुरान नकल फरमाते हैं, और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, यानी बैन सतर या तहत सतर, तो वो तर्जुमा होते हैं, और फिर बैनुल कौसैन यानी विद इन द ब्रैकेट्स जो होते हैं वो खुलासा तफसीर होती है, यानी मुख्तसर तफसीर होती है। तो वो फरमाते हैं कि वकवीना इला बनी इसराइला फिल किताबी, और हमने बनी इसराइल को किताब में, अब इसकी तफसीर फरमा रहे हैं कि वो किताब जो है ना, खा तौरात हो या दूसरी अंबिया बनी इसराइल के सहीफों में। ठीक है, तो सहीफे जो है वो दूसरे अंबिया को भी मिलते रहे हैं, लेकिन तौरात जो है, तौरात या इंजील, ये जो है वो बुनियादी किताबें ये थी, तौरात इंजील बनी इसराइल को जो मिली थी। सहीफों से मुराद होता है कि छोटे मोटे पैम्फलेट्स वगैरह टाइप की चीज है ना, तो दूसरे अंबिया को भी मिलती रही। तो किताब से यहाँ पे दोनों मुराद हो सकती हैं। ये बात बतौर पेशन गोई के बतला दी थी कि तुम सरजमीन शाम में दो मरतबा गुनाहों की कसरत से खराबी करोगे। ठीक है, फिल अर्द, अर्द से यहाँ पे क्या मुराद, पूरी जमीन मुराद नहीं है, बल्कि जहां पर ये रहते थे वहीं पर इन्होंने खराबी करनी थी। और ये कहाँ रहते थे, शाम के अंदर रहते थे। ठीक है, सरजमीन शाम, जिसके अंदर के आज का सीरिया भी उसके अंदर आ जाता है, जॉर्डन भी उसके अंदर आ जाता है, फलस्तीन भी उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और जो टर्की का कंट्री है, तो टर्की का जो सदरन पार्ट है, जुनूबी पार्ट, वो भी शाम ही का हिस्सा है असल में। खराबी करोगे, लतुफ्सिदुन्ना, खराबी करोगे एक मरतबा। अच्छा, अब ये खराबी करने से की तफसीर लिख रहे हैं, एक मरतबा शरीयत मूसविया की मुखालफत, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत के अहकाम आए हुए थे उनकी तुम मुखालफत करोगे, और दूसरी मरतबा शरीयत ईसविया की मुखालफत, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद तुम इस तरह की एक्सट्रीम दर्जे की जो मुखालफत करोगे ना, वो दूसरी मरतबा कब होगी, ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। ठीक है, अच्छा, और दूसरों पर भी बड़ा जोर चलाने लगोगे, यानी जुल्म व ज्यादती करोगे। ठीक है, तो फरमाते हैं कि इस तरह लतुफ सिदुन्ना में हुकूकुल्लाह के जाया करने की तरफ, और वला तअलुन्ना में हुकूकुल इबाद जाया करने की तरफ इशारा है। ठीक है, इशारा है मतलब, वरना फसाद का जो लफ्ज है वो दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और लतअलुन्ना का जो लफ्ज है वो दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी और हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी। ठीक है, और ये भी बतला दिया था कि दोनों मर्तबा सख्त सजाओं में मुब्तला किए जाओगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने वकदैना इला बनी इसराइल फिल किताब, इसके अंदर भी ये बातें बता दी थी। फिर जब उन दो मर्तबा में से पहली मर्तबा की मियाद आएगी, यानी जब पहली दफा तुम इतनी ज्यादा नाफरमानी पर उतर आओगे ना, तो हम तुम पर अपने ऐसे बंदों को मुसल्लत कर देंगे जो बड़े जंगजू होंगे। जंगजू के लिए क्या लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, उली बासन। बास कहते हैं जंग को, लड़ाई को, और उली का मतलब वाले, तो लड़ाई वाले, लड़ाई करने वाले होंगे, तो हम उनको मुसल्लत कर देंगे तुम्हारे ऊपर। फिर वो तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे। ठीक है, फजासू खिलालत दियार, दार का मतलब होता है घर, और दियार घर, दार की जमा है, तो तुम्हारे घरों के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और तुमको कत्ल व कैद और गारत कर देंगे। और ये वादा है सजा, एक वादा है जो जरूर होकर रहेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में वादा फरमाया ना, मैं यामल सू आई युज्जा भी, जो भी गुनाह करेगा तो वो उसकी सजा पाएगा। वो भी एक वादा है ना अल्लाह की तरफ से, कि जो भी गुनाह करेगा, मैं यामल सू आई। ठीक है, तो यहाँ पर बनी इसराइल के साथ उसी वादे की एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकली फॉर बनी इसराइल अल्लाह ताला वो वादा फरमा रहे हैं कि तुमने तुम गुनाह करोगे ना तो तुम्हारे साथ ये होगा। ठीक है, तो फरमाया था वकाना वादम मफूला, ये तो हमारा वादा है, मैं यहाँ अमल सुन युजा भी, तो ये तुम्हारे साथ भी हमने किया हुआ है। अच्छा, फिर जब तुम अपने किए पर नादिम ताइब हो जाओगे, तो हम फिर उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे। ठीक है, यानी दुनिया में तुम्हें हम गलबा अता फरमा देंगे। सुम्मा रददना लकुमुल करता अलैहिम व अमददनाकुम बे अमवालिन व बनीना व जअलनाकुम अक्सर नफीरा। ठीक है, तो इसके बाद फिर उनके तौबा का जिक्र है कि जब तुमने तौबा कर लेना तो फिर हमने जो है वो फिर तुम्हें गलबा अता फरमा दिया, और हमने तुम्हारी मदद करी, अमदनाकुम, और हमने तुम्हारी मदद करी अमवाल से और बेटों से, यानी तुम्हें हमने खूब सारे जो है ना वो नस्लें भी तुम्हारी बढ़ा दी और तुम्हारी तादाद को बहुत ज्यादा कर दिया। उस जमाने में जो थी ना वो फौजें जो हैं वो तादाद की बुनियाद पर लड़ा करती थी, इनके पास 3,000 बंदे हैं तो उनके पास 6,000 बंदे, अब 6,000 बंदे जो है ना वो 3,000 के ऊपर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, अक्सर नफीरा, यानी हमें तो खूब सारी तादाद भी अदा फरमा देंगे। अच्छा, तो खुलासे तफसील में लिखते हैं कि जब तुम अपने किए पर नादम मुताइब हो जाओगे, तो हम फिर उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे, गो बवास्ता सही कि जो कौम उन पर गालिब आएगी वो तुम्हारी हामी हो जाएगी। इस तरह तुम्हारे दुश्मन उस कौम से और तुमसे दोनों से मगलूब हो जाएंगे, यानी हम तुम्हें किसी दूसरी कौम के जरिए से मदद अता फरमा देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला डायरेक्टली भी मदद अता कर सकते हैं फरिश्तों के जरिए से, जैसे बदर के अंदर मदद अता फरमाई। ठीक है, और दूसरे जो मार्के थे उनके अंदर मदद अता फरमाई फरिश्तों के जरिए से, और अल्लाह ताला जो है ना वो कभी अपने दूसरे बंदों के जरिए से भी मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। क्या मतलब, कि जो खुद मुसलमान नहीं थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों की मदद कर दी। ठीक है, तो ऐसे भी मदद करने का तरीका होता है, यानी ये दोनों सूरतें अल्लाह की मदद ही होती हैं। इवन काफिरों की तरफ से भी अगर मदद मिल जाए ना, तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से मदद होती है। और माल बेटों से जो कि कैद और गारत किए गए थे, हम तुम्हारी इमदाद करेंगे, यानी ये चीजें तुमको वापस मिल जाएंगी जिनसे तुम्हें कुवत पहुंचेगी। ठीक है, तो इनका माल जो है वो जो उली बासन शदीदन लोग थे ना, वो इनका माल लूट करके ले गए थे, लेकिन वो माल भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ऐसे ही हुआ, आगे हम तफसील पढ़ेंगे इसकी। और हम तुम्हारी जमात यानी ताबईन को बढ़ा देंगे, तुम्हारी जो इत्तबा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद को हम बढ़ा देंगे। बस जाह व माल और औलाद व متبعین سب میں ترقی ہوگی۔ اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اب آئندہ اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے برائی کرو گے، یعنی پھر تمہیں سزا ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جس کا آگے بیان ہے۔ پھر جب مذکورہ دو مرتبہ کے فساد میں سے آخری مرتبہ کا وقت آئے گا، آخری مرتبہ کا وقت آئے گا یعنی وعد الآخرہ، ٹھیک ہے، دو میں سے آخری، اس کا جب وقت آئے گا نا تو کیا ہوگا کہ اس وقت تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کرو گے۔ یہ تفسیرن بیان کر رہے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں شریعت عیسویہ کی مخالفت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں، چہرہ بگاڑ دیں۔ اردو میں کے اندر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی لیسوء وجوہکم، ٹھیک ہے، ان کا چہرہ جو ہے نا وہ خراب کر دیں، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حلیہ بگاڑ دیں۔ اور جس طرح وہ پہلے لوگ مسجد بیت المقدس میں لوٹ مار کے ساتھ گھسے تھے، یہ پچھلے لوگ بھی، پچھلے سے یہاں پر مراد ہے اگلے، ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ما علو، جس کے اوپر بھی ان کا زور چلے گا تدبیرن وہ اس کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تم مخالفت و معصیت سے باز آ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو عجب نہیں، عجب نہیں، عجب نہیں، یعنی امید بمعنی وعدہ ہے، عصا، عصا کا مطلب کیا، عجب نہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے اور تم کو ادبار و ذلت سے نکال دے، ٹھیک ہے، یعنی جو تم پست ہوئے ہوئے تھے نا، ادبار، دبر، دبر کہتے ہیں بیک سائڈ کو، ٹھیک ہے، تو جو تم پیچھے پیچھے ہوئے ہوئے تھے، اور بیک سائڈ جو ہوتی ہے وہ پست ہوتی ہے، انسان اسی کے اوپر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو تم کو نا ایسی پستی سے اور ایسی ذلت سے نکال دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہوئے، یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، ہے نا، ابھی سیرت کلاس کے اندر یہی بالکل موضوعات چل رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ والے، ٹھیک ہے، بنو نضیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی کری، تو بنو نضیر کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ جو ہیں وہ رہ گئے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اچھا خاصا وعدہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وعدہ خلافی اور نبی علیہ السلام کی نفرت اور مخالفت جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی، تو بنو قریظہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوا کہ ان کے جو لڑنے والے مرد تھے ان سب کو جو ہے وہ تیغ کر دیا گیا، یعنی ان کی جو ہے وہ گردنیں مار دی گئیں، اور باقی جو عورتیں بچے تھے وہ ان کو پھر باندی غلام بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ پھر یہی ہوا کیونکہ انہوں نے بھی وہی کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پھر وہی حرکت کرو گے خود ہم بھی تمہارے ساتھ ویسی سزا کا معاملہ کریں گے، ذلیل و رسوا ہونے والی سزا۔ لیکن یہ تو دنیا کی سزا ہوگی نا، اور آخرت میں ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے، تو ایمان دنیا سے رخصت ہوگی نا، تو پھر صرف یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کی سزا جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو گئی، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی تمہیں سزا ہی ملے گی جہنم کے اندر۔ اب حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان آیات کا ربط بیان کر رہے ہیں، ربط آیات، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو ہے وہ پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز دوسرے کے ساتھ نا مربوط ہے، اگرچہ کہ بظاہر ہمیں ہماری کم علمی کی وجہ سے کوئی ربط نظر نہیں آتا، ایک بات چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی پھر ایک دم سے ایک مختلف سی بات ہمیں نظر آتا ہے جیسے شروع ہو گئی ہو، ठीक है, तो हमें रब्त नजर नहीं आता, लेकिन उलमाए कराम को अल्लाह ताला ने इतनी बसीरत और बसारत दी हुई होती है कि उनको रब्त नजर आ रहा होता है। तो इसके ऊपर बाकायदा उलमा ने जो है वो पूरी पूरी किताबें लिखी हुई है कि कुरान के अंदर कैसे जो है वो रब्त है। तो हजरत ने उसका एक हिस्सा यहाँ पे बयान किया कि इससे पहली आयात जअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल में अहकाम शरिया और हिदायत इलाहिया के इत्तबा व अताअत की तरगीब थी। और मज़कूर सदर आयात में उनकी मुखालफत से तरहीब का सॉरी उनकी मुखालफत से तरहीब व जजर का मजमून है। ठीक है, यानी पीछे था ना आयत नंबर 2 के अंदर, वह आतेना मूसल किताब व जअलनाहु हुदन लिबनी इसराइला अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। ठीक है, यानी हमने तुम्हें जो है ना वो बनी इसराइल को किताब दी थी मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से, और उसको उस बनी इसराइल के लिए हमने हिदायत बना दिया था ताकि तुम मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना वली ना बनाओ। जुर्रियत मा हमलना मानू मन हमलना मानू। ठीक है, हमने नूह अलैहिस्सलाम की जुर्रियत को जो है ना वो कश्ती के अंदर सवार किया था, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, जो कि बहुत ही शुक्र करने वाले बंदे थे। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें पहले गिनवाई थी, और फिर उसके बाद जो है ना इन नेमतों की नाशुक्री के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र फरमा दिया। ठीक है, जैसे कि वो जो एक मशहूर शुक्र वाली नेमत है ना, ल इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत को जरूर बिल जरूर तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो शुक्र का जिक्र करने के फौरन बाद फिर क्या जिक्र करते हैं, वला इन कफर तुम, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे, इन अजाबी लशदीद, तो मेरा अजाब जो है ना वो भी शदीद है। ठीक है, तो पहले शुक्र का जिक्र किया, फिर उसके बाद फिर कुफर के ऊपर अजाब का जिक्र किया। यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरतीब कि पहले शुक्र का जिक्र किया, ठीक है, और यानी शुक्र वाली बातें याद दिलाई, और उसके बाद फिर अजाब का जिक्र किया। इन आयात में बनी इसराइल के दो वाक़े इबरत और नसीहत के लिए जिक्र किए गए कि उन्होंने एक मरतबा मासी और हुक्म रब्बानी की मुखालफत में इनहिमाक किया, यानी मुनहमक हो गए। ठीक है, यानी गर्क हो गए अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। ठीक है, जिन्होंने उनको तबाह किया, फिर उनको कुछ तंबीह हो गई और शरारत कम कर दी उन्होंने तो संभल गए। ठीक है, शरारत कम कर दी क्या मतलब कि इंसान जो है ना वो तो खता का पुतला होता है, खता और गुनाह तो इंसान से होता है, हर इंसान जो है वो गुनाहगार है, कुल्लू बनी आदम खता उन, राइट, कि हर आदम का जो बच्चा है ना वो गुनाहगार है। ठीक है, लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि जो बेहतरीन गुनाहगार होते हैं ना वो कौन होते हैं, जो कि अपने गुनाह से तौबा भी करते रहते हैं। ठीक है, तो गुनाह करना ये तो इंसान से हो जाता है, लेकिन साथ साथ जो है वो तौबा का दामन हाथ से ना छोड़े। तो इसी वजह से फरमा रहे कि तुमने खता करनी ना कम कर दी। ठीक है, यानी तुमने साथ साथ जो है वो तौबा भी करते रहे, तो इसी को संभलना कहते हैं। गलती से हाथ पुरस हो गया, क्या मतलब गलती से हाथ प्रेस हो गया, आप किसी और से कुछ कह रही हैं। बहरहाल, मगर कुछ अरसे के बाद फिर वही शरारतें और बदआमालियां उनमें फैल गईं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके दुश्मन के हाथ से सजा दिलाई। कुरान करीम में दो वाक्यों का जिक्र है, मगर तारीख में इस तरह के 6 वाक्यात मजकूर हैं। कुरान करीम में तो दो वाक्यों का जिक्र है ना कि तुम दो मरतबा ये हरकत करोगे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री बुक्स को उठाएं तो उनके अंदर 6 ऐसे वाक्यात का जिक्र है। तो हजरत ने फिर यहाँ पर वो 6 के 6 वाक्यात लिख दिए। पहला वाक्या, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बानिये मस्जिद अक्सा की वफात के कुछ अरसे के बाद पेश आया कि बैतुलमुकदस के हाकिम ने बेदीनी और बदअमली अख्तियार कर ली, तो मिस्र का एक बादशाह उस पर चढ़ आया और बैतुलमुकदस का सामान सोने चांदी का लूट कर ले गया, मगर शहर और मस्जिद को मुनहदिम नहीं किया। ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम तक का जो दौर था ना बनी इसराइल के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम तक का जो दौर था, ये फिर इनका बड़ा आलीशान दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर तो कैसे था कि मिस्र में फिरौन की गुलामी से मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकले थे, और जो है वो वादिय ती के अंदर उनको पहुंचा दिया था। तो फिरौन की गुलामी तो खत्म हो गई थी, अपने नफ्स की गुलामी से वो फिर भी नहीं निकल पाए थे, ठीक है। लेकिन मूसा अलैहि सलाम की वफात पा जाने के बाद यूशा अलैहि सलाम और उनके साथ जो दूसरे अंबिया थे, तो उनकी सरकर्दगी में फिर बनी इसराइल जो है ना वो फलस्तीन में वापस लौट आए थे, फलस्तीन के इलाके में, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है वो बल्कि यूसुफ अलैहि सलाम के दौर में भी काफिरों से लड़ाई करी थी, कामयाब लड़ाई। फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं तालूत अलैहि सलाम, ठीक है। तो तालूत अलैहि सलाम ने भी जो है वो कौम अमालका से लड़ाई लड़ी थी, और उसमें उनको फतह नसीब हुई थी। तालूत अलैहि सलाम की फौज के अंदर हजरत दाऊद दाऊद अलैहि सलाम थे, नौजवान थे, और दाऊद अलैहि सलाम ने जो है वो उसको कत्ल कर दिया था जो जालूत था, ठीक है। तो दाऊद अलैहि सलाम को उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तालूत अलैहि सलाम के बाद बादशाह अता फरमाई, दाऊद अलैहि सलाम वाज अ किंग, ठीक है। जब ये किंग डेविड भी कहते हैं, ये क्रिश्चियंस किंग डेविड जो दाऊद अलैहि सलाम को कह रहे होते हैं। फिर दाऊद अलैहि सलाम की बादशाहत जो थी वो क्या जबरदस्त उनकी बादशाहत थी, लेकिन उनके जो बेटे सुलेमान अलैहि सलाम थे उनकी बादशाहत तो ऐसी बादशाहत थी कि जो कि ना कभी किसी को मिली, ना कभी किसी को बाद में मिलेगी। तो सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने में तो फिर माशाल्लाह आपको पता ही है, जो हमने सूरह नमल वगैरह के अंदर तफसीर पढ़ी है, तो उसमें फिर सुलेमान अलैहि सलाम ने ना अपनी मौत से पहले जो आखिरी काम किया था वो ये हैकल सुलेमानी जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा जो है ना वो महल और मस्जिद वगैरह बनाई थी, जिन्नों के जरिए से अल्लाह ताला ने उनकी मदद करी थी और उन्होंने ऐसी चीज बनाई थी। तो उनके इंतकाल के बाद जो है वो बनी इसराइल जो है वो कुछ अर्सा जो है वो ठीक रहे, लेकिन फिर जो है ना वो बुराइयों के अंदर पड़ गए, हत्ता कि इनके हुक्मरान भी जो है वो बुराइयों के अंदर पड़ गए। तो अल्लाह ताला ने फिर मिस्र के एक बादशाह, यानी मिस्र जो था ना, फिर वो भी काफिर मुल्क बन गया था, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में तो मिस्र जो है वो बड़ा अच्छा मुल्क बन गया था, लेकिन फिर उसके अंदर फिरौनियत वापस आ गई थी। अब फिरौन के बड़ा लश्कर तो खत्म हो गया था, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो है वो पानी में गर्क होके खत्म हो गया था, लेकिन पूरी की पूरी नस्ल तो खत्म नहीं हो गई थी ना फिरौन की। तो उस नस्ल ने जो है वो अपनी बादशाहत मिस्र के अंदर बरकरार रखी थी, और वहां पर फिर ये काफिर बादशाह जो है वो चलते रहे। तो उनमें से एक बादशाह ने फिर बैतुल मुकद्दस के ऊपर चढ़ाई करी और सोना चांदी वगैरह वहां से लूट कर तो ले गया, लेकिन शहर को और मस्जिद को मुनहदम नहीं किया, ठीक है। ये मेजर जो जो ये ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी सल्तनतें रही हैं ना, उनमें से एक बड़ी सल्तनत जो है वो हमेशा से मिस्र की रही है, एक शाम की रही है, एक इराक की रही है, ठीक है, एक जो है वो फारस की रही है, और एक जो है वो हिंद की रही है, ठीक है। हिंद भी जो है वो पुरानी चीज है, चाइना भी जो है वो बहुत पुरानी जगह है, ठीक है। उसी तरह से वेस्ट में चले जाएं तो मिस्र जो है वो भी एक बहुत पुरानी यानी एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, और उसके नीचे चले जाएं तो ये हबशा, हबशा की जो है ना ये भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जहां पर के बादशाहत बड़ी अजीम व शान किस्म की बादशाहतें रही हैं। एक ये हिजाज का ही इलाका था, बल्कि अरब का इलाका, सरजमीन अरब के, जहां पर जो है ना कोई बड़ी बादशाहत नहीं रही कभी भी, छोटी छोटी बादशाहतें रही हैं, लेकिन बड़ी बादशाहत वहां पर कभी भी नहीं रही। अच्छा, ये तो पहला वाकया हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाकया कि इससे तकरीबन 400 साल बाद का है कि बैतुल मुकद्दस में बसने वाले बाज यहूदियों ने बुत परस्ती शुरू कर दी, और बाकियों में ना इत्तेफाकी और बाहिमी झगड़े होने लगे। उसकी नहुसत से फिर मिस्र के किसी बादशाह ने उन पर चढ़ाई कर दी, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला जो है ना वो डालते हैं किसी के दिल में कि हाँ भाई चढ़ाई करो उनके ऊपर, मुसलमान उस जमाने के मुसलमान बनी इसराइल थे, तो उन्होंने जो है ना जब इतनी ज्यादा नाफरमानी यानी बुत परस्ती पर भी उतर आए, और बाकी जो थे वो ना इतफाकी और बाहिमी झगड़ों के अंदर भी बुत परस्ती पर नहीं उतरे, उन्होंने जो है वो ना इतफाकी वगैरह शुरू कर दी बहुत ज्यादा। तो फिर अल्लाह ताला ने मिस्र के बादशाह के दिल में डाला कि चलो भाई चलते हैं उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो उसने जो है ना फिर क्या किया कि किसी कदर मस्जिद, शहर और मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया, और फिर वो भी वापस चला गया। ठीक है, फिर उनकी हालत कुछ संभल गई, यानी फिर बनी इसराइल जो है वो उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। ठीक है, अम्बिया भी आते रहते थे मुस्तकिल बनी इसराइल के अंदर, तो वो ये बात याद भी दिलाते रहते थे कि भाई ये तो अल्लाह ताला के अजाब की, यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब आया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो जब वो बात मान लेते थे नबी की तो उनकी हालत समझ जाती थी। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि बहरे हिंद हिंदुस्तान को कहते हैं, बहरे हिंद हिंदुस्तान को कहते हैं, बहरे हिंद तो बहर को कहते हैं, बहर तो समंदर को कहते हैं, तो हिंदुस्तान जो है वो समंदर तो नहीं है ना। हिंदुस्तान बहरे हिंद जो है वो समंदर है जो कि हिंदुस्तान के नीचे है, या हिंदुस्तान के चारों तरफ लगा हुआ, चार चार तीन तरफ लगा हुआ। ठीक, तो हिंदुस्तान तो भाई जहाँ पे हिंदू रहते हैं वो उस जगह को हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा, तीसरा वाकया, उसके चंद साल बाद जब बुख्त नसर शाह बाबुल ने बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई कर दी और शहर को फतह करके बहुत सामान लूट लिया और बहुत से लोगों को कैदी बनाकर ले गया और पहले बादशाह के खानदान के एक फर्द को अपने कायम मकाम की हैसियत से इस शहर का हाकिम बना दिया। ठीक है, यानी दूसरे वाकये के बाद बनी इसराइल फिर संभल गए थे, लेकिन फिर कुछ अच्छा गुजरा तो फिर जो है वो गुनाहों के अंदर पड़ गए। ठीक है, तो बुख्त नसर ने इस दफा जो है ना वो बाबुल का बादशाह, बाबुल क्या है, बेबीलोन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये इराक की जगह है जहां पर इराक में ये मशहूर दरिया है ना टिग्रेस एंड यूफ्रेट्स, यानी दजला और फरात जो दरिया हैं, तो इनके दरमियान का जो इलाका है ना ये बाबुल का इलाका कहलाता है। और जाहिर है दरियाओं की वजह से ये इलाका जो है वो इंतहाई सरसब्ज और शादाब इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सिविलाइजेशन उस जमाने में रहती थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जिसको कहते थे। तो उनका ये एक बादशाह था बुख्त नसर, उर्दू और फारसी में उसको बुख्त नसर कहते हैं, और ये इनकी जो 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 बाइबल है क्या कहते हैं ईसाइयों की जो 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 किताब है, तो उसमें ना इसका नाम जो है वो नबू नबू खैड नबू खैड नजर नबू खैड निजार या नजर, ये बाइबल के अंदर इसको इसको इसका नाम है। ठीक है, तो वो फारसी के अंदर जो है वो बुख्त है, अरबी ये अंग्रेजी के अंदर जो है वो नबुकद। ठीक है, तो ये बादशाह जो था ना अब अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाला कि भाई तुम इधर से हमला करो। सही है, तो इसने फिर बहुत सा माल भी लूटा उनका और लोगों को कैदी बना करके अपने साथ बाबुल ले गया, लेकिन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया वहां पर जो कि असल में यानी कोई बाबुल का बंदा नहीं था, बल्कि उसने जो है ना बनी इसराइल ही के एक एक बंदे को बादशाह बना दिया। ठीक है, वहां का शहर का हाकिम बना दिया। ये तीसरा वाकया हुआ, इनकी नाफरमानी और उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सजा। फिर इनकी नाफरमानी और अल्लाह की सजा का चौथा वाकया, उस नए बादशाह ने जिसको के बुख्त नसर ने अपॉइंट किया था, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी गोया के गवर्नर के तौर पर उसको बैतुल मुकद्दस में इस्टेब्लिश किया था उसको, तो उस नए बादशाह ने जो बुत परस्त और बदआमद था बुख्त नसर से बगावत कर दी, तो बुख्त नसर दोबारा चढ़ाया। ठीक है, तो यानी अभी उनकी ये तौबा वबा उन्होंने अभी नहीं करी थी बनी इसराइल वालों ने, तो बुख्त नसर जो है ना जब उस बादशाह ने बुख्त नसर से बगावत करी तो बुख्त नसर दोबारा चढ़ाया और कश्तो खून और कत्लो गारत की कोई हद ना रही, शहर में आग लगाकर मैदान कर दिया शहर, यानी बहुत आग लगाई, हर चीज को जो है वो जला दिया। उस जमाने में लकड़ी से जो है वो ज्यादातर चीजें बना करती थी, हत्ता के जो यानी इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि दूसरी किताब तारीख की किताबों के अंदर है कि जो चीजें लकड़ी से नहीं भी बनी हुई थी ना वो भी पिघल गई, पिघल गई। ठीक है, तो वो पिघल करके जो है ना वो बिल्कुल हर चीज फ्लैट हो गई बेसिकली। ये हादसा तामीर मस्जिद से तकरीबन 415 साल के बाद पेश आया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात जिस वक्त वो तामीर मस्जिद हुई थी, तो उसके 415 साल के बाद ये वाला वाकया पेश आया। इसके बाद यहूद यहां से जिला वतन होकर बाबुल चले गए, जहां नहायत जिल्लत व ख्वारी से रहते हुए 70 साल गुजर गए, यानी एग्जाइल में ना, ये क्योंकि यहाँ पर तो अब कुछ बाकी ही नहीं बचा था, तो यहूद जो है ना ये भी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन वाली जगह पे चले गए, क्योंकि वहां पे खाने पीने को तो था ना सब कुछ, ठीक है। लेकिन वहां पर जो है वो जाहिर है बाबुल के लोगों ही के गुलाम बन करके वहां पे रहे। तो ये जो बुकनसर था ना, अच्छा ये दौर क्या था, ये दौर था हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वाला दौर, ठीक है। क्योंकि बाइबल के अंदर जहां पे बुकनसर का जिक्र है ना, वहां पे डैनियल, जिसको दानियाल अलैहिस्सलाम को वो लोग अंग्रेजी में और अपने रोमन क्या कहते हैं और अरामेक वगैरह लैंग्वेज के अंदर डैनियल कहते हैं, ठीक है। तो काफी यानी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वहां पे, डैनियल जो उनकी बाइबल की एक किताब है, तो उसके अंदर बुकनसर का बड़ा तस्करा है और दानियाल अलैहिस्सलाम के तस्करे के साथ, ठीक है। कि ये जो है ना ये बड़ा यानी सख्त बादशाह तो था, लेकिन इसने ये जो है ना वो दानियाल अलैहिस्सलाम से मशवरे भी किया करता था, ठीक है। और दानियाल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के नबी थे, जाहिर है बनी इसराइल के जो लोग बाबुल के अंदर इसने अपने गुलाम बनाए हुए थे, तो उन्हीं के अंदर जो है वो दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। तो ये लोगों से अपने इसने ही ना अपने ये सारे बादशाह जो है वो अपने दरबारों के अंदर नजूमियों को और जादूगरों को रखा करते थे, और उनसे जो है ना वो अपने ख्वाबों की ताबीर वगैरह भी पूछा करते थे। लेकिन इसके दरबार का कोई दूसरा जादूगर या नजूमी जो है ना वो इसको सही ताबीर नहीं दे पाता था, ठीक है। लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम वो उसको सही ताबीर दे दिया करते थे। तो इसकी निगाह में ना दानियाल अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत बन गई थी, और बाइबल में लिखा हुआ है, वो सही गलत का तो हमें कोई कंफर्म नहीं है, कि दानियाल अलैहिस्सलाम की सोहबत और उनके असर की वजह से जो है ना इसने भी जो है वो यानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी शुरू कर दी थी। अगरचे कि ये मुशरिक था, बुत परस्त था, ठीक है, लेकिन एक बात पे ये मुत्तफिक हो गया था कि दानियाल वाला जो खुदा है ना, दानियाल का जो खुदा है ना, वो सारे खुदाओं से बड़ा खुदा है, ठीक है। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो तारीख है। तो बहरहाल ये तो मुख्तसर के जरिए से अल्लाह ताला ने इन लोगों को खूब जबरदस्त किस्म की सजा दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाह ईरान ने शाह बाबुल पर चढ़ाई करके बाबुल फतह कर ली। बुकनसर जो है बिलाखिर अपनी मौत मर गया। उसके बाद जो इसके बाद जो बादशाह वगैरह आया होगा वो इतना अच्छा बादशाह नहीं होगा, तो ईरान के बादशाह ने फिर इसके ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि बुकनसर जो है ये तो बाबुल में था ना, बाबुल जो है वो इराक है, तो ईरान इराक वॉर जो है ना ये पहले से चल रही है, ने? तो ईरान के बादशाह ने हमला कर दिया। फिर उसके बाद शाह ईरान को इन जिला वतन यहूदियों पर रहम आ गया, ठीक है, क्योंकि यहूदियों ने जो है फिर वो अपनी जिल्लत व ख्वारी से तंग आकर के तौबा इख्तियार करी, और जो उनके पास अल्लाह के नबी थे उनकी उन्होंने कुछ बात बात माननी शुरू कर दी होगी, तो अल्लाह ताला ने शाह ईरान के दिल में इनके ऊपर रहम डाल, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो दिलों के अंदर बात डाल देते हैं ना, ठीक है, दुश्मन के दिल में जो है वो रहम डाल दें किसी के बारे में, तो बस मसला खत्म हो गया, ठीक है। तो अल्लाह के लिए तो ये इतना आसान है, किसी के दिल में हमारे लिए रहम डाल दें, ठीक है। यही मामला जो है वो बादशाहत के लेवल के ऊपर भी होता है, ग्लोबल लेवल पर भी यही मसला यही मामला चल रहा होता है, और इवन घर के अंदर भी यही मामला चल रहा है। एक शख्स जो है वो हमारे साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, ठीक है, लेकिन एकदम जो है ना उसके दिल में हमारे लिए रहम आ जाता है, अब जो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो फिर सब अल्लाह की तरफ से है ना, हमें तो असल में हमारा काम क्या है कि हम अल्लाह की तरफ इन तमाम मामला के अंदर रुजू करते रहें और अपने गुनाहों पर माफी मांगते रहें। तो उसने क्या किया कि उनको वापस मुल्क शाम में पहुंचा दिया, और उनका लौटा हुआ सामान भी वापस कर दिया, ठीक है, यानी बाबिली लोगों से उनका सामान लेकर के इनको वापस लौटा दिया। अब यहूद अपने आमाल बद और मासी से तायब हो चुके थे, यहां नए सिरे से आबाद हुए, तो शाह ईरान के ताउन से फिर मस्जिद अक्सा को साबिक नमूने के मुताबिक बना दिया, ठीक है। यानी मस्जिद अक्सा जो कि बुकनसर के आग की वजह से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी थी ना, अब चूंकि फिर एक बड़ी रॉयल किस्म की हेल्प मिल गई इनको, इन्होंने जो है ना मस्जिद अक्सा को दोबारा तामीर कर, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद अक्सा थी। ठीक है, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये पहली दफा नहीं हुआ, यानी एक दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है इस तरह से कि सनम खाना, ये लोग ईरान वाले थे, ये लोग भी तो वो थे ना फायर वर्शिपर्स थे ये, ठीक है ना, मजूसी थे ये ईरान वाले, लेकिन मजूसियों के जरिए से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और उसकी मदद से जो है वो मस्जिद बना ली इन लोगों ने। ठीक है, जैसे गोया के इंडिया के अंदर जो है वो हिंदू मुसलमानों की मदद करके कोई मस्जिद बना दे, ठीक है ना, ये कितनी दफा इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। बहरहाल, तो ये चौथा वाकया था। पांचवा वाकया पे हमें अगली क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास का तो वक्त खत्म हो चुका है। किसी को कोई सवाल अगर पूछना हो तो खत्म करने से पहले पूछ लें। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। तफसीर की आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।